नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। उसकी भक्ति जीवन की है भलाई, उसकी महिमा उसकी भक्ति जीवन की है भलाई, शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई, शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, ओ यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, 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 यीशु के गुणगान, यीशु के गुणगान, यीशु के गुणगान,
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इससे पहले कि हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब परमेश्वर की निकटता में आए, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक की आत्मिक आँखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें, हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दें, ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो आपका जीवित वचन हमारे हर एक के हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए। प्रेम पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपका वचन सच्चा और जीवित है, हमसे हर एक से बातचीत करें। हम विनती करते हैं उन भाई बहनों के लिए भी जो दुखी और निराश हैं, जो चिंता और परेशानियों में हैं, जो बीमारी और तंगी हालत में हैं, प्रभु जी आप उनसे भी बातचीत करें, ताकि वे भी इस बात को समझ सकें कि आप उनकी चिंता करते हैं, आपने उन्हें रचा है, आप उनसे प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि वे भी आपसे प्रेम करें। पिता परमेश्वर, इस वक्त फिर से हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। आज के अध्ययन में आप हम सबकी सहायता करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वह जा रहा है कि स्थान तैयार करे, तब आकर वह उन्हें अपने साथ वहां ले जाएगा। इस पर थोमा ने प्रश्न पूछा कि वे मार्ग कैसे जानेंगे जहां वह जाता है। यीशु ने उनसे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब आगे फिलिपुस एक प्रश्न पूछता है जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 7 और 8 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। मित्रों, ध्यान दीजिए, फिलिपुस बहुत कम बोलता था। हम यह भी देखते हैं कि वह किसी न किसी को प्रभु के पास लाता रहता था। वह नतनेल को प्रभु के पास लाया था, मंदिर में वह यूनानियों को प्रभु के पास लाया। यहाँ वह मनुष्य की सर्वोच्च मनोकामना प्रकट करता है, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। मेरे मित्रों, मैं आपसे एक वैतिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जीवन में आपकी क्या आकांक्षा है? क्या आप धन पाना चाहते हैं, या क्या आप नाम कमाना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं, और क्या आप अपने बच्चों को प्रभु यीशु की शिक्षाओं में बढ़ाना चाहते हैं? परंतु हमारी सबसे बड़ी मनोकामना है, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? फिलिपुस जानता था कि पुराने नियम में मूसा ने परमेश्वर की महिमा को देखा था, यशाया को परमेश्वर की महिमा का दर्शन प्राप्त हुआ था। आप यह न सोचें कि यीशु ने उसे झिड़का। यीशु के कहने का अर्थ था कि वह उसके साथ रहता था और उसके वचन को सुनता था, उसके कार्यों को देखता था, उसके चमत्कारों को भी देखा। यीशु में पिता का साक्षात दर्शन था। वह 3 वर्ष यीशु के साथ साथ था। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है कि यीशु पिता परमेश्वर की महिमा और उसका प्रकट स्वरूप था। अर्थात यीशु में परमेश्वर का रूप नहीं, वरन उसका सामर्थ, उसके गुण, उसका प्रेम और संपूर्ण चरित्र प्रकट था। मेरे मित्रों, उसमें पिता परमेश्वर की संपूर्णता प्रकट थी। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 24 पद में, कि परमेश्वर आत्मा है, और 1 अध्याय उसके 18 में वह कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, केवल एकमात्र पुत्र जो उसकी गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया, अर्थात प्रभु यीशु ने। हम उसके साथ अनंत काल तक रहेंगे, वे जो उससे प्रेम रखते हैं उनका एकमात्र लक्ष्य है कि उसे जाने, उसे जानना। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं, क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मित्रों ध्यान दीजिए, यीशु अपने वचनों और कार्यों की गवाही को प्रकट कर रहा है। उसके कार्य और उसके वचन सुसंगत थे। हम बड़ी बड़ी गवाहियां देते तो हैं, परंतु हमारा जीवन आचरण सिद्ध नहीं है। इसी कारण यीशु ने अध्याय 13 में शोधन का कार्य किया और उस पर बल भी दिया। क्या आपने ध्यान दिया कि यीशु ने कभी अपनी इच्छा से निर्णय नहीं लिया था? उसने स्पष्ट कहा कि वह अपने मन से कुछ नहीं कहता, उसमें उपस्थित पिता परमेश्वर ही कार्य करता था। मेरे मित्रों, यही वह फिलिपुस से कह रहा था कि उसने यीशु के मुंह से जो सुना वह परमेश्वर की वाणी थी और यीशु के कार्य पिता के काम थे। यीशु की शिक्षा में विघ्न हो रहा था और हम जैसे जानते हैं कि पहले पत्रस, तब थोमा और अब फिलिपुस, परंतु वह पद 22 तक अपना व्याख्यान समाप्त नहीं करता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। ध्यान दीजिए, यदि वे यीशु के वचनों पर विश्वास नहीं करें तो उसके कामों को देखकर विश्वास करें कि वही परमेश्वर है, क्योंकि ऐसा काम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 12 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। मेरे मित्रों, यहाँ लिखा है कि इससे भी बड़े काम। इससे यीशु का अभिप्राय क्या था? पेंतिकोस्त के दिन शमौन पत्रस का उपदेश सुनकर 3,000 मनुष्यों ने यीशु को ग्रहण किया था। प्रचारकों ने संपूर्ण विश्व में मनुष्यों को उद्धार का मार्ग दिखाया। कौन सा काम बड़ा है, आत्मा की चंगाई या शरीर की चंगाई? आत्मा की, जिससे मनुष्य अनंत जीवन पाए, सबसे बड़ा काम है, क्योंकि मनुष्यों को परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में लाना है। ये बड़े काम कैसे किए जाएंगे? दुर्बल मनुष्यों के माध्यम से प्रभु काम करेगा। यीशु का प्रवचन महान था, परंतु जब वह हमारे द्वारा प्रचार करता है तब वह और भी अधिक महान काम है। उसे उपस्थित जनता सुनती थी, परंतु हमारे द्वारा वह रेडियो पर संपूर्ण संसार को प्रवचन सुनाता है। यह क्या ही अद्भुत बात है। इस अंश में यीशु ने 20 बार पिता की चर्चा की है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 13 और 14 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। ध्यान दीजिए, तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। अनेक जन मुझसे कहते हैं कि वे यीशु के नाम से मांगते हैं परंतु होता नहीं, क्या कारण है? मैं कहता हूं कि आप इस पद में वह देख रहे हैं जो है नहीं। ये सब पद जुड़े हैं, अतः ध्यान से पढ़ें। आगे हम देखते हैं यूहन्ना 14 अध्याय के 15 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब हम इन तीनों पदों को एक साथ पढ़ें और समझें यीशु के नाम में मांगने का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है उसके साथ ऐसी पहचान बनाना कि उसके साथ साथ दिखाई दें, अर्थात उसकी महिमा में प्रार्थना करना। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के सम्मुख हम नहीं यीशु खड़ा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के समक्ष हम नगण्य हैं। अतः यह न समझें कि हम कहें मसीह के नाम में तो हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। मेरे मित्रों, पिता परमेश्वर का महिमान्वन प्रार्थना का उत्तर देने में है। अतः हमारी प्रार्थना का उद्देश्य स्वार्थ पूर्ति नहीं, पुत्र में पिता का महिमान्वन है। हमारी प्रार्थना का उत्तर मसीह की आज्ञा का पालन करने पर मिलता है। यही हमारे प्रेम का प्रमाण है। मेरे मित्रों, क्या आप उससे प्रेम रखते हैं? क्या आप अपने प्रेम के वशीभूत उसकी आज्ञा आज मानते हैं? यह प्रतिज्ञा उन्हीं को दी गई है जो उससे गहरा प्रेम करते हैं। वे जो प्रार्थना में इस प्रतिज्ञा का दावा करते हैं और यीशु से प्रेम नहीं रखते, वे वास्तव में किसी और के झूठे हस्ताक्षर कर रहे हैं, उसके जो प्रभु से प्रेम करता है। हम यूहन्ना 14 उसके 16 और 17 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यहां पर हम पाते हैं कि आज की अद्वितीय सच्चाई यही है। पिंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा विश्वासियों में समा गया था और जब से उनमें अंतर्वास करता है, पवित्र आत्मा का नाम सहायक है, परंतु इसका मूल अर्थ है बलवंत साथी। संसार उसे देख नहीं सकता क्योंकि उसे आत्मा द्वारा ही देखा जाता है और आत्मा द्वारा ही उसकी आराधना भी की जाती है। वही हमें वचन समझाता है, वही हमारी आंखें और कान खोलता है कि हम वचन को ग्रहण करें, उसे माने। वह हमें सत्य में ले चलता है, अन्यथा बाइबल एक इतिहास की पुस्तक है। अतः मनुष्य को पहले यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है कि वह हमें पवित्र आत्मा दे। मेरे प्रियो, हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय और 18 पद में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा कि वह हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, वह पवित्र आत्मा रूप में हम में अंतर्वास करेगा। यूहन्ना 14 उसके 19 और 20 पद में आगे लिखा है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। 20 पद में, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। अब यहां पर सवाल यह होता है कि किस दिन? आज के दिन पिंतेकोस्त के बाद बाइबल के सबसे गूढ़ शब्द तुम मुझ में और मैं तुम में। तुम मुझ में अर्थात हमारा उद्धार। उद्धार का अर्थ ही है हम मसीह में। यही कारण है कि पत्रस ने कहा, बपतिस्मा लो अर्थात मसीह के साथ एक हो जाओ। परमेश्वर जिसे भी देखता है मसीह में देखता है या मसीह से विलय देखता है। आप में उसे मसीह की धार्मिकता दिखाई देती है। यहां पर वचन में लिखा है, मैं तुम में अर्थात अलग किया जाना। यह संसार में मसीही जीवन है। क्या मसीह आप में अंतर्वासी है? गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20 पद में पौलुस लिखता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं अब शरीर में जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। यह वचन कितना ही अद्भुत है। हम यूहन्ना 14 उसके 21 पद में भी पढ़ते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यदि आप उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं तो उससे प्रेम करने का दिखावा ना करें। वह कहता है कि अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, लेकिन कैसे? आप यह ना समझें कि वह दर्शन देगा। पवित्र आत्मा आपको वचन में ले जाएगा और आप वहां यीशु को पाएंगे। हम यूहन्ना 14 उसके 22 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह यहूदा इस्करियोती नहीं है, यह पहला परमेश्वर का प्रचारक है। इसका उत्तर शेष अध्ययन में हम पाते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 23 और 24 पद में आगे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। मेरे मित्रों, संसार हमारे द्वारा प्रभु को जानेगा। आज्ञा पालन अनिवार्यता है। आज्ञा पालन हमारे प्रभु प्रेम का प्रमाण है। आपके प्रेम की क्या स्थिति है? क्या प्रभु आपके लिए वास्तविक है? हम यूहन्ना 14 उसके 25 और 26 पद में पढ़ते हैं, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ध्यान दीजिए, सत्य तो यह है कि संसार के लिए यीशु अपने शिष्यों को तैयार कर रहा था। यूहन्ना इस बात का प्रमाण है। वह अपने सुसमाचार वृतांत द्वारा हमारे लिए उद्धार का मार्ग यीशु को लाया है। यीशु ने उन्हें विश्वास दिलाया कि पवित्र आत्मा उन्हें सब कुछ स्मरण कराएगा और शिक्षा भी देगा। ठीक ऐसा ही हुआ भी। हम यूहन्ना 14 उसके 27 पद में पढ़ते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यह पद हमें अध्याय के आरंभ में ले जाता है। यह शांति पापों की क्षमा की शांति नहीं है, यह वह महान शांति है जो मसीह को समर्पित मनों में वास करती है, उनके मनों में जो परमेश्वर की इच्छा में रहते हैं। हम यूहन्ना 14 उसके 28 से 31 पद में आगे पढ़ते हैं, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब वह हो जाए तो तुम प्रतीति करो। मैं अब से तुम्हारे साथ और बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं। उठो यहां से चलें। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि ये वचन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। वह जाकर सहायक अर्थात पवित्र आत्मा भेजेगा, शीघ्र ही वह पकड़ा जाएगा और वे तितर बितर हो जाएंगे। अतः उसके पास उनके साथ अधिक समय नहीं था। इस संसार का सरदार अर्थात शैतान आने वाला था। मेरे विचार में गतसमनी में उसका सामना यीशु से हुआ। वह संसार के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मरकर फिर से जी उठेगा। उसके स्वर्ग में चले जाने के बाद पवित्र आत्मा आएगा और सारी बातों को उन्हें समझाएगा और सिखाएगा। जो जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए कही है उन्हें स्पष्ट करेगा। मेरे मित्रों, यह सच है कि आज भी पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है और वह उन कार्यों को स्पष्ट कर रहा है जिसे हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। कई बार हमने ऐसा महसूस किया है कि वह हमारे साथ है, वह हमारी मदद कर रहा है, और कई बार हमने इस बात को भी समझ लिया है कि यह पवित्र आत्मा है जो मुझे और आपको अपने वचन के द्वारा स्पष्टीकरण दे रहा है। आज भी कई जगह पर जब हम जाते हैं, प्रार्थनाओं में बैठते हैं, तो हम इस बात की गवाही देते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य कर रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आज मैं और आप उसकी खोज में हैं कि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करें जो सहायक प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए भेज दिया है। यदि आज हम उसे पाते हैं तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन को बदल देगा, हमें उन आशीषों से भर देगा जिसे प्रभु यीशु ने अपने रहते काल में हमें दिया है। आज हम इस बात को अपने जीवन में आने दें और यह निर्णय लें कि प्रभु आज हमारे जीवन के सहायक के रूप में आप हमें पवित्र आत्मा दें, हमसे बोलें, हमसे बातचीत करें, वचन को और गहराई में जाने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए आप हमारी मदद करें। मित्रों, आज जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर आपको अवश्य ही सहायक देंगे, क्योंकि उन्होंने सहायक देने की बात कही है और वह झूठा नहीं है। वह आज भी वही कार्य करता है जो वह पहले करता था। आइए आज के इस वचन के प्रकाशन में हम सब अपने आप को जांचें और देखें कि किस प्रकार से थोमा, फिलिपुस और पतरस ने परमेश्वर से सवाल किए और उसने उसके उत्तर भी दिए और इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया कि वह जाता है और इसलिए जाता है कि वह मेरे लिए और आपके लिए जगह तैयार करे। क्या आज आप और मैं उससे मिलने के लिए, उस स्थान में जाने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो आइए आज हम सब भी इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने आप को तैयार करें। आइए हम प्रभु की निकटता में आए और प्रार्थना करें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। आपने कहा कि आप हमारे लिए एक सहायक देंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए जिसे आपने हमारे लिए भेज दिया ताकि वो हमारा सहायक हो जाए। हम विनती करते हैं कि आप हमें अपने सामर्थ्य और अधिकाई से भरें ताकि हम आपके वचनों को समझ सकें, अपने जीवन में उतार सकें और उसके अनुसार चलने पाएं। हमारे हर एक गलतियों को, हमारे कमियों को आप दूर करें, हमारे पापों को आप क्षमा करें ताकि हम पवित्रता में और अधिक बढ़कर आपकी संगति में, आपकी सहभागिता में बढ़ सकें। इस समय प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आशीष देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जो निराश हैं, जो दुखी हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि वे अकेले हैं, अनाथ हैं, प्रभु जी आप उनके सहायक हैं। आप उनसे बातचीत करें कि आपने उन्हें नहीं छोड़ा है, आपने उन्हें सहायक दिया है ताकि उनके साथ संगति करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
अगर हम